नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में दो दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी की। मोदी ने अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर मई महीने में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किसान सम्मान निधि के 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस अवसर पर मोदी ने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने सोमवार को देश में 5G एकल नेटवर्क बनाने के लिए रिलायंस जियो के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। ये घोषणा भारत में हाल ही में हुई 5G नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद की गई है। एक बयान के अनुसार देश में रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैनाती के लिए जियो और एरिक्सन के बीच ये पहली साझेदारी है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, हम जियो के 5G SA तैनाती के लिए एरिक्सन के साथ साझेदारी करके खुश हैं। हमें विश्वास है कि जियो का 5G नेटवर्क भारत के डिजिटलीकरण को गति देगा और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में नींव के रूप में काम करेगा। बयान में कहा गया है कि जियो द्वारा एकल 5G नेटवर्क तैनाती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं और उद्यमों को वास्तव में परिवर्तनकारी 5G अनुभव मिलेंगे। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने सोमवार को कहा कि उसे भारतीय दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो से 5G नेटवर्क बनाने के लिए एक ठेका मिला है। कंपनी ने बताया कि इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच हुए करार के तहत दुनिया के सबसे बड़े 5G नेटवर्क में से एक को तैयार किया जाएगा। अनुबंध के तहत नोकिया अपने एयर स्केल पोर्टफोलियो से उपकरणों की आपूर्ति करेगा, जिसमें बेस स्टेशन, उच्च क्षमता वाले 5G, मैसिव MIMO एंटेना और रिमोट रेडियो हेड्स शामिल हैं। ये उपकरण विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर का समर्थन करते हैं। रिलायंस जियो 5G एकल नेटवर्क तैनात करने की योजना बना रही है, जो उसके 4G नेटवर्क के साथ काम करेगा। ये नेटवर्क जियो को उन्नत 5G सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम करेगा। एक बयान में नोकिया ने कहा कि उसे रिलायंस जियो द्वारा एक बहुवर्षीय ठेका मिला है, जिसके तहत वो देश भर में व्यापक एयर स्केल पोर्टफोलियो से 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपकरण की आपूर्ति करेगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, जियो अपने सभी ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए नवीनतम नेटवर्क तकनीकों में लगातार निवेश करने को प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि नोकिया के साथ हमारी साझेदारी से विश्व स्तर पर सबसे उन्नत 5G नेटवर्क तैयार होगा। नोकिया के अध्यक्ष और CEO पेक्का लुंडमार्क ने सौदे को एक महत्वपूर्ण जीत बताया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की कथित भूमिका की जाँच करने को कहा था। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा। पीठ ने कहा, हम विचार करेंगे, नोटिस जारी की जाए। स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और येस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में RBI अधिकारियों के शामिल होने की जाँच नहीं की गई। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि RBI के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में सक्रिय रूप से मिलीभगत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की और इसके तहत भारत यूरिया बैग्स भी पेश किए। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरकों की विपणन में मदद मिलेगी। राजधानी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला मैदान में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की 3.30 लाख से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एग्री स्टार्टअप सम्मेलन का भी उद्घाटन किया और एक ई पत्रिका इंडियन एज का विमोचन किया। ये पत्रिका किसानों की सफलता की कहानियों सहित अभी हाल ही के विकास, मूल्य रुझान विश्लेषण, उपलब्धता तथा खपत सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक के परिदृश्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। एक राष्ट्र एक उर्वरक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया कराएगी। पाकिस्तान इस सप्ताह वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की निगरानी सूची बाहर निकल सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को ये बात कही गई। धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने में विफल रहने के बाद पड़ोसी देश को जून में 2018 में इस श्रेणी में शामिल किया गया था। डॉन अखबार के अनुसार धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कानूनी, वित्तीय नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर सरकारी क्षेत्र की कमियों के चलते पाकिस्तान को FATF की निगरानी सूची में डाला गया था। धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर पेरिस स्थित वैश्विक निगरानीकर्ता ने कहा, सिंगापुर के टी राजा कुमार की अध्यक्षता के तहत FATF की पहली बैठक 20 और 21 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं जताई हैं। बाद में इन कार्यवाही बिंदुओं की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।